आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर।
बृहस्पतिवार 12 जून 2025 का दिन और SBS के हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आपको अनीता बरार का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले कि आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों को स्वीकार करते हैं। SBS हिंदी कुलीन राष्ट्र के वारंजरी लोगों, उनके अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है। हम उन सभी मूल निवासियों और टॉरस स्ट्रेट आइलैंड के पारंपरिक उत्तराधिकारियों का भी सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। श्रोताओं, आज आप हमारे कार्यक्रम में जानकारी ले सकेंगे सुपर के बारे में और साथ ही बाय नाउ पे लेटर यानी इसमें जो नए नियम हैं उसका क्या असर रहेगा वो जानेंगे। साथ ही बात करेंगे कि भारतीय सिनेमा का जो विश्व स्तर पर एक अलग सम्मान बना है बहुत सराहना मिल रही है और भारत और ऑस्ट्रेलिया की फिल्म इंडस्ट्री के संबंधों पर भी चर्चा करते चलेंगे और आज आप आज भी भाग ले सकेंगे फिल्म सितारे जमीन पर। इस फिल्म के पास जीतने के लिए आपको क्या जानकारी है या आपको क्या करना है वो हम आगे बताएंगे ही, लेकिन अभी सबसे पहले न्यूज फ्लैश। नमस्कार, बृहस्पतिवार 12 जून के लिए यह है न्यूज फ्लैश और मैं हूं अनीता बरार। पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि ऑकस सुरक्षा समझौते की अमरीकी रक्षा विभाग की समीक्षा चिंता का विषय नहीं है। मॉरिसन, जिन्होंने 2021 में ऑकस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, उन्होंने स्काई न्यूज से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका इस समझौते को बनाए रखेगा। इस बीच लेबर पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री पॉल कीटिंग ने कड़े शब्दों में बयान जारी करते हुए कहा है कि समीक्षा ऑस्ट्रेलिया को खुद से बचा सकती है। उन्होंने ऑकस को ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा अब तक के सबसे खराब रक्षा खरीद कार्यक्रम के रूप में वर्णित किया है। ग्रीन्स के रक्षा और विदेश मामलों के प्रवक्ता डेविड शूब्रिज का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को और अधिक स्वतंत्र रक्षा और विदेश नीतियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्वींसलैंड के एक विकलांगता अधिवक्ता ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए राज्य के युवा अपराध कानूनों की आलोचना की है। क्वींसलैंड एडवोकेसी फॉर इंक्लूजन ग्रुप के मानवाधिकार वकील टॉम डिक्सन ने संयुक्त राष्ट्र को बताया कि क्वींसलैंड की जेलों में विकलांग बच्चों की अधिक संख्या इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपराधिक न्याय प्रणाली विफल है। युद्धग्रस्त गाजा पट्टी से 10 कैंसर रोगियों सहित 16 बच्चों को चिकित्सा उपचार के लिए जॉर्डन के अस्पतालों में पहुंचाया गया है। ये निकासी जॉर्डन के स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच एक संयुक्त प्रयास है और इस साल की शुरुआत में शुरू की गई जॉर्डन गाजा मेडिकल कॉरिडोर पहल के तहत आने वाले बाल रोगियों का ये 5वां समूह है। लॉस एंजलिस में प्रदर्शनकारियों को इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट द्वारा विवादास्पद छापों के विरोध के बीच गिरफ्तार करने के बाद पुलिस बसों में भर दिया गया है। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है और उन पर कौन से अपराध के आरोप लगाए जा सकते हैं। ये विरोध प्रदर्शन पहली बार पिछले शुक्रवार को यानी 6 जून को शुरू हुआ जो ट्रंप प्रशासन द्वारा इमिग्रेशन छापों की एक श्रृंखला के जवाब में हुआ था। फेडरल संपत्ति और कर्मियों की सुरक्षा में मदद के लिए नेशनल गार्ड और यूएस मैरीन्स को भी बुलाया था। विक्टोरियन लिबरल सांसद मोयरा डीमिंग को पूर्व विपक्षी नेता जॉन पेसिटो के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई में देरी करने के प्रस्ताव के लिए राज्य के भ्रष्टाचार विरोधी आयोग के पास भेजा गया है, जिसके बदले में उन्हें गारंटीकृत पूर्व चयन दिया जाएगा। ये शिकायत जनता के एक व्यक्ति द्वारा की गई है। और एनडीटीवी से मिले समाचार के अनुसार भारत मेघालय के शिलोंग में राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी और उनके कथित साथी राज कुशवाहा सहित तीन अन्य को पुलिस ने जिला और सत्र न्यायालय में पेश किया। मेघालय पुलिस ने 10 दिनों की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सभी आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मेघालय पुलिस के पास फोरेंसिक सबूत हैं और वो क्राइम सीन रिक्रिएट करने और आरोपियों से गहन पूछताछ की तैयारी कर रही है। अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारी फेसबुक और हमारे वेब पेज sbs.com.au/hindi से जुड़े रहें। न्यूज फ्लैश समाप्त हुआ। और श्रोताओं, न्यूज फ्लैश के बाद अब बात सुपरन्यूएशन की। आपका सुपरन्यूएशन फंड कितना सुरक्षित है? सरकार कह रही है कि अब अधिक टैक्स देना होगा और विपक्ष इसे ना ये कुछ को भावित करें, लेकिन आने वाले वक्त में इसका असर बढ़ने की पूरी संभावना है। तो आइए इसी पर पूरी जानकारी लेते हैं इस रिपोर्ट में, जिसे आपके लिए लाई है हमारी सहयोगी स्वाति शर्मा।
ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाले हर व्यक्ति की तनख्वाह से 11.5% हिस्सा अपने आप उनके सुपर एनुएशन या सुपर फंड में चला जाता है। यह एक इन्वेस्टमेंट फंड है जिसे आप रिटायरमेंट के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। 1990 के दशक से पहले यह इस बात पर निर्भर करता था कि आप किस नौकरी में काम करते हैं या आपके बॉस के साथ आपकी क्या सहमति थी कि सुपर किस किस को मिलेगा। लेकिन 1992 में पूर्व लेबर प्रधानमंत्री पॉल कीटिंग ने इसे बदलकर सभी के लिए अनिवार्य बना दिया।
मिस्टर स्पीकर, फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री, वेल इन एडवांस ऑफ रिफॉर्म इन अदर एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज, ऑर्डिनरी ऑस्ट्रेलियंस विल बी एबल टू बिल्ड अ डिसेंट नेस्ट एग फॉर देयर रिटायरमेंट।
इसका मकसद दो मुद्दों को संबोधित करना है। यह सुनिश्चित करना कि लोगों के पास सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट के बाद आराम से रहने के लिए पैसा हो और फेडरल बजट से वित्तीय दबाव को कम किया जा सके। यदि लोगों के पास पर्याप्त बचत है तो वे वृद्धावस्था पेंशन जैसे वेलफेयर पर निर्भर नहीं होंगे। ग्रेटन इंस्टीट्यूट के अर्थशास्त्री ब्रेंडन कोट्स बताते हैं कि सुपर पर लगाया जाने वाला कर आपकी आय पर लगने वाले कर से काफी अलग है।
Any contributions into super are taxed at 15% for most people, and then the earnings, whether it be dividends or the interest income from bonds or term deposits, that's also taxed at 15% for most people while they're working, and it's 0% once they're retired.
Super में जमा होने वाली रकम और फंड से होने वाली कमाई जैसे ब्याज और डिविडेंड पर 15% टैक्स लगता है, पर केवल पहले के $2 million ही टैक्स मुक्त होते हैं। उच्च आय वाले लोग कुछ योगदानों पर 30% टैक्स का भुगतान करते हैं। जब आप अपने सुपर एनुएशन में कुछ बेचते हैं और पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन्स कमाते हैं तो उस पर भी 10% कर लागू होता है। 2 साल पहले कोषाध्यक्ष जिम चामर्स ने कुछ सुपर एनुएशन बैलेंस पर कर बढ़ाने की योजना की घोषणा की थी।
I'm confident that Australians will see this change as modest and reasonable and fair.
और चुनाव में भारी जीत के बाद अब लेबर पार्टी यह बदलाव लागू करने की ओर अग्रसर है। डिप्टी लिबरल लीडर टेड ओब्रायन इस विवादास्पद बदलाव से काफी नाखुश हैं।
Let me be very clear where the coalition stands on this. Labor's super tax is super big and super bad.
लेबर सरकार कह रही है कि $3 million से ज्यादा के सुपर बैलेंस पर होने वाली कमाई पर अब 30% टैक्स लगेगा, जो कि फिलहाल 15% है, और $3 million तक की राशि तक सब कुछ पहले की तरह ही रहेगा।
It makes a meaningful difference to the budget and it helps us fund some of our other priorities. It's all about making sure that the superannuation system is fairer, that it's more sustainable.
फिलहाल लगभग 80,000 ऑस्ट्रेलियाई या सुपर एनुएशन खाता रखने वाले 0.5% लोग इस बदलाव से प्रभावित होंगे, लेकिन यह आंकड़े पूरी तरह अनुक्रमित नहीं है, जिसका अर्थ है कि हर साल जैसे जैसे मुद्रास्फीति और कमाई बढ़ती है, आपके सुपर में जमा होने वाली राशि भी बढ़ेगी और अधिक लोग इस टैक्स स्लैब के अंदर आएंगे और उन्हें अतिरिक्त कर का भुगतान करना होगा। इन सब में सबसे बड़ा विवाद है अवास्तविक लाभ यानी अनरियलाइज्ड गेन। जब आप पैसा निवेश करते हैं, अगर वह इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा लगाए गए निवेश से अधिक मूल्यवान है तो आपके निवेश का मूल्य भी बढ़ जाता है, लेकिन निवेश पर लाभ तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक उसे बेचा नहीं जाता। वह है रियलाइज्ड गेन यानी वास्तविक लाभ। बिक्री होने के बाद फिलहाल उस लाभ पर 10% कर लगाया जाता है। लेबर का प्रस्ताव है कि संपत्ति बेचे जाने से पहले ही उन लाभों पर कर लगाया जाए। गठबंधन इस बात से खुश नहीं है।
The introduction of unrealized capital gains will be a disaster for the Australian economy.
इसका मतलब है कि सरकार आपके सुपर के मूल्य को देखेगी और इसकी तुलना पिछले वर्ष से करेगी। $3 million से अधिक की शेष राशि में किसी भी वृद्धि पर 30% कर लगाया जाएगा, फिर चाहे वह वृद्धि रियलाइज्ड लाभ के कारण हो या अनरियलाइज्ड लाभ के कारण। $3 million से कम की सभी धनराशि पर पहले की तरह ही कर लगाया जाएगा। किसानों सहित व्यवसाय मालिकों के लिए चिंता की बात यह है कि कभी कभी उनके खेत या अन्य प्रमुख संपत्तियां उनके सेल्फ मैनेज्ड सुपर एनुएशन फंड में होती हैं। तो इस नई पॉलिसी के तहत यदि उनके खेत का मूल्य बढ़ता है तो भले ही उन्होंने उसे बेचा ना हो, लेकिन अगर वैल्यू बढ़ी है तो उन्हें अतिरिक्त कर देने के लिए पहले से ही पैसे जुटाने होंगे। अब तक जब तक वे खेत बेचते नहीं और उससे मिलने वाली धनराशि और चल संपत्ति उन्हें नहीं मिल जाती, तब तक उन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ता था। कोषाध्यक्ष जिम चामस का कहना है कि अवास्तविक लाभ पर कर लगाना कुछ सुपर खातों पर अतिरिक्त कर की गणना करने का एकमात्र तरीका है।
The unrealized gains calculation was recommended to us by Treasury. We provided years of opportunities for people to suggest different ways to calculate that liability, and nobody has been able to come up with one.
लेबर के लिए ये परिवर्तन राजस्व में वृद्धि करेंगे और सुपर एनुएशन को धन संचय करने के लिए टैक्स फ्रेंडली स्थान बनने से रोकेंगे।
The typical retiree does not actually spend down their super. A retiree in their 80s has typically got more money in super 2 decades after they retire than on the day that they do retire. And you know, Treasury is expecting, they're forecasting that 1/3 of the money that's withdrawn from super, you know, by 2060 each year will be in the form of bequests going to the kids.
सरकार को उम्मीद है कि नए नियम इस साल 1 जुलाई से सभी संपत्तियों पर लागू होंगे, हालांकि कानून अभी संसद से पारित होना बाकी है। सुपर टैक्स में हो रहा यह बदलाव सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि वो नियम हैं जो आपकी रिटायरमेंट की तैयारी को सीधे सीधे प्रभावित कर सकते हैं। SBS न्यूज की रानिया यालोप की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी के लिए प्रस्तुत किया स्वाति शर्मा ने। इस अंश में दी गई जानकारी सामान्य है। अपनी स्थिति पर स्पष्ट सलाह के लिए किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें।
तो श्रोताओं, आपने जाना कि सुपर के इन बदलावों से क्या प्रभाव पड़ेगा। और हाँ, आज भी सितारे जमीन पर इस फिल्म के पासेस आप जीत सकते हैं। कैसे, इसकी पूरी जानकारी आगे देती हूँ इस अंतराल के बाद। SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ अनीता बरार। श्रोताओं, जैसा कि संतराल से पहले मैंने कहा कि आज भी आप जीत सकते हैं सितारे जमी पर इस फिल्म के डबल पास, तो बस आपको क्या करना है, आपको इस सवाल का जवाब लिख के भेजना है। सवाल अब तक शायद आपको पता ही है, लेकिन मैं सवाल दोबारा दोहरा ही रही हूं कि कौन सी ये फिल्म है जिसमें आमिर खान एज ए एक्टर नहीं है। फिल्में हैं धोबीघाट, सीक्रेट सुपरस्टार, मेला, पीपली लाइव। तो इन चार फिल्मों में कि कौन सी ये फिल्म है जिसमें आमिर खान कलाकार की हैसियत से दिखाई नहीं देते। आप अपने जो जवाब हैं, अपने नाम और ईमेल के द्वारा हमें SMS करें 04397666। और आप हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी इसके जवाब लिखकर भेज सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि इस कार्यक्रम के दौरान ही आप वो उत्तर हमें लिखकर भेजें। तो आपके जवाबों की हमें प्रतीक्षा तो रहेगी ही। और आइए अब बात करते हैं बाय नाउ पे लेटर, ये जो सेवाएं हैं जैसे कि आप जानते हैं आफ्टर पे और जिप, तो अब ये सरकार के नए नियमों के दायरे में आ गई हैं। अब इससे न सिर्फ उधार देने की प्रक्रिया सख्त होगी बल्कि ग्राहकों की सुरक्षा भी बढ़ जाएगी। क्या असर होगा इन बदलावों का आम लोगों पर, तो आइए जानते हैं। इस रिपोर्ट में आपके लिए प्रस्तुत कर रही हैं ये रिपोर्ट वृषाली चैन।
माय नाउ पे लेटर कंपनियों जैसे आफ्टर पे और जिप पर अब सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, लेकिन इसका असर उन करीब 40% ऑस्ट्रेलियाई लोगों पर क्या होगा जो इन सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। नए कानूनों के तहत इन सेवाओं को अब एक तरह का उधार माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि कंपनियों को अब नियमों के अनुसार उधार देने की जिम्मेदारी निभानी होगी, जैसे कि क्रेडिट चेक करना और ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा देना। लाखों ऑस्ट्रेलियाई अब आफ्टर पे या जिप जैसी सेवाओं का इस्तेमाल खरीदारी आसान बनाने के लिए करते हैं। इससे लोगों को किसी भी चीज की पूरी कीमत एक साथ देने की जगह कई आसान किश्तों में कुछ हफ्तों में चुकाने की सहूलियत मिल जाती है। पारंपरिक तरीके जैसे लेबाय व्यवस्था में ग्राहक पहले किश्तों में भुगतान करते हैं और पूरा भुगतान होने के बाद सामान मिलता है, लेकिन आफ्टर पे जैसे ऐप इसके बिल्कुल उलट ग्राहक को पहले सामान या सेवा दिलवा देते हैं और फिर भुगतान बाद में किश्तों में करना होता है। अब तक ये क्रेडिट सेवाएं लगभग 10 साल से किसी भी सरकारी नियम के दायरे से बाहर थीं। फाइनेंशियल राइट्स लीगल सेंटर में वरिष्ठ नीति और एडवोकेसी अधिकारी डू मैक्रे कहते हैं,
Today is a positive day for Australian consumers with the law now treating buy now, pay later as what it really is, it's credit. The reason why it's taken so long is buy now, pay later providers had taken advantage of a loophole in the law that ensured that they didn't get covered by the credit laws that apply to all other credit, including credit cards and mortgages and the like.
मंगलवार 10 जून से एल्बनीजी सरकार के सख्त नियम लागू हो गए हैं, जिनके तहत बाय नाउ पे लेटर यानी BNPL सेवाओं को अब क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा माना जाएगा। नए कानूनों के अनुसार इन कंपनियों को अब ऑस्ट्रेलियन क्रेडिट लाइसेंस लेना होगा, मौजूदा उधार नियमों का पालन करना होगा और क्रेडिट एक्ट के तहत इन्हें अब एक नई लो कॉस्ट क्रेडिट कैटेगरी में रखा गया है। तो अगर आप इन सेवाओं के बारे में सोच रहे हैं या फिर उन करीब 41% ऑस्ट्रेलियाई लोगों में से हैं जिन्होंने पिछले 6 महीनों में इन्हें इस्तेमाल किया है, जैसा कि फाइंडर के एक सर्वे में बताया गया, तो आपके मन में सवाल हो सकता है कि ये नए नियम आपके लिए क्या बदलाव लाएंगे।
They have responsible lending obligations, so the laws are being introduced to ensure that they take the steps they need to be assured that you can afford the credit that they're providing.
Afterpay ke international head of public policy Michael Sadat ka kehna hai ki in niyamon ke lagu hone ke baad naye upbhoktaon ke liye is madhyam se khariddari shuru karne se pehle kuch atirikt jaanch padtal hogi.
Anyone who's applying for an Afterpay account will be asked to agree to a credit check and will be asked to provide some additional information as part of the application process. So that's already live and it's working well. That credit check will assist Afterpay in determining what spending limits should be allocated to the customer.
Financial Counseling Australia ki CEO Dr. Dominic Merrick ka kehna hai ki jo log kishton ka bhuktan karne mein mushkilon ka samna kar rahe hain, unke liye bhi ab naye suraksha upay lagu kiye jayenge.
The other big change is that it means that consumers have a right to ask for hardship if they're having difficulty making payments, and they can complain to the Financial Ombudsman, AFCA, or the Australian Financial Complaints Authority. And then the final thing it means is that credit checks will be done, and so when you use buy now, pay later, it might show up on your credit report.
इस आखिरी बदलाव का मतलब ये है कि अब buy now, pay later से लिया गया कर्ज आपके क्रेडिट स्कोर को प्रभावित कर सकता है. यानी अगर आप समय पर भुगतान नहीं करते या किश्त चूक जाते हैं तो इसका असर भविष्य में घर या गाड़ी के लिए लोन लेने की आपकी क्षमता पर पड़ सकता है. फाइनेंशियल राइट्स लीगल सेंटर के मेक्रे का कहना है कि ग्राहकों को सावधान रहना चाहिए कि वे जरूरत से ज्यादा खर्च की सीमा ना अपनाएं, क्योंकि कुछ कंपनियां आपके पूरे लिमिट को क्रेडिट रिपोर्ट में दिखा सकती हैं।
Understand that these products will be now listed on your credit report. So if you're being offered, say, I don't know, $4,000 for a buy now pay later facility for something that you wanted to buy, use to buy a $150 pair of jeans, the full amount will be on your credit report, that $4,000. So it's important to engage upfront whether you need that higher limit. If you don't need it, don't take it, and make sure your buy now, pay later limit is right for you and your needs.
उपभोक्ता हितैषी जैसे कि डॉक्टर मेरिक का कहना है कि इन नए नियमों के तहत जो जांच और संतुलन की व्यवस्था की गई है उसकी जरूरत बहुत पहले से महसूस की जा रही थी.
Almost as soon as buy now pay later products emerged onto the scene, financial counselors started seeing people getting into trouble with them. We've been calling for a really long time for some protections in place.
कई आलोचक लंबे समय से कह रहे हैं कि Afterpay जैसी सेवाएं लोगों को बिना पैसे के खर्च करने के लिए उकसा सकती हैं और इससे आर्थिक रूप से कमजोर लोग लंबे समय के लिए कर्ज में फंस सकते हैं. हालांकि Afterpay के माइकल सादत का कहना है कि उनके ज्यादातर ग्राहक अपने भुगतानों को लेकर जिम्मेदार होते हैं और उनका तर्क है कि नुकसान से बचाने के लिए पहले से ही कई सुरक्षा उपाय लागू हैं.
I guess the biggest difference is that a product like Afterpay is completely interest-free. So unlike traditional credit products like credit cards, there's no risk that a consumer will end up in a spiral of revolving debt that's, you know, incurring interest rates of 20% or more. Every transaction is 4 installments. It's really straightforward. You're never charged interest. And if you miss a repayment, you can't actually use Afterpay to spend again until you pay back the amount that's overdue.
एक अहम बात जो अब तक नहीं कही गई है वह है Afterpay द्वारा लिए जाने वाले लेट फीस, जो पहले उनकी सालाना कमाई का 20% से ज्यादा हिस्सा रही है. अगर आप Afterpay की कोई किश्त समय पर नहीं चुकाते तो आपको ऑर्डर की कीमत का 25% तक जुर्माना देना पड़ सकता है. भले ये राशि कम लगे लेकिन फाइनेंशियल काउंसलिंग ऑस्ट्रेलिया की डॉक्टर डोमिनिक मेरिक का कहना है कि जब आर्थिक रूप से कमजोर लोग एक साथ कई बाय नाउ पे लेटर यानी BNPL सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो ये शुल्क धीरे धीरे बढ़कर एक बड़ी परेशानी बन सकते हैं.
You see people who are using buy now, pay later products for everyday items. They'll have multiple buy now, pay later products on the go at once. It's very hard to track. There's late fees accumulating.
Salvation Army की मनी केयर टीम की क्वींसलैंड मैनेजर विकी पेनर का कहना है कि नए नियमों से पहले वे अक्सर ऐसे लोगों को देखती थी जो BNPL सेवाओं का इस्तेमाल करते करते कर्ज के जाल में फंस जाते थे.
Recently, one of our clients came in working hard, finding it hard to make ends meet. That's when he started to use buy now, pay later to fill the gap. He thought it was like a one-off time, but the next pay cycle, the same thing happened. So he continued to use the buy now, pay later. And eventually what happened was he maxed out his accounts and opened up another to cover the first repayment, the first one. This cycle actually continued until he had 6 buy now, pay later accounts. That's when it became unmanageable.
उनका मानना है कि ये नए नियम उन लोगों को काफी हद तक सुरक्षा देगा जो गंभीर कर्ज में फंसने के खतरे में होते हैं.
Buy now, pay later debt doesn't always come from poor choices, but it actually creeps up quietly, and these reforms are here to catch those risks a lot earlier.
हालांकि उपभोक्ता संगठनों ने BNPL सेक्टर में आई पारदर्शिता और जवाबदेही का स्वागत किया है, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भी और सुधार की गुंजाइश है. फाइनेंशियल राइट्स लीगल सेंटर से ड्रू मैक्रे का कहना है कि नए नियम उन ग्राहकों की समस्या को नहीं सुलझाते जो एक साथ कई BNPL सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं और इससे भारी कर्ज में फंस जाते हैं.
is actually one of the flaws of the regulation as we see it. At the moment, there is no real strict rules against multiple accounts being obtained. We would love to have seen that. That's one of the things we were arguing for. There are some rules about them having multiple accounts within the same family of buy now, pay later providers. But yes, we're hoping that maybe the credit reporting system may lead to some improvements in that multiple account problem that we've seen.
SBS News से सैम डवर की इस खबर को आपके लिए SBS हिंदी से प्रस्तुत किया वृषाली जैन ने.
तो श्रोताओं, आपने जाना कि buy now pay later ये जो सेवाएं हैं अब जो नए नियमों के दायरे में आई हैं, तो इसका असर आम लोगों पर क्या पड़ेगा और क्या अभी इसके और सुधार की आवश्यकता है. खैर, इस अंतराल से पहले यानी इससे इस रिपोर्ट से पहले जो अंतराल था उससे भी पहले हम बात कर रहे थे सुपरन्यूएशन की. उसमें एक शब्द आया था धन संचय. तो किसी वजह से अगर आप उसको नहीं समझ पाए हैं तो आपको बताती चलूं कि धन संचय यानी एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ यानी धन बचत करने या इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया है या यूं कहें कि रिटायरमेंट प्लान है, तो सुपरन्यूएशन में उसी की बात हो रही थी. और आपको याद है ना कि आज भी हम सितारे जमी पर इसके पासिस दे रहे हैं और आपको बताना है कि धोबी घाट, सीक्रेट सुपरस्टार, मेला और पिपली लाइव इनमें से ये कौन सी फिल्म है जिसमें आमिर खान एक्टर के रूप में हमें दिखाई नहीं देते हैं. आप अपना नाम और ईमेल एसएमएस करें 04397997667 पर. और अब समय हुआ है एक अंतराल का. SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार. श्रोताओं, बताती चलूं कि संदेश जो मेरे पास में आ रहे हैं तो सबके नाम बताना तो संभव नहीं होगा, लेकिन हाँ, इस बीच में हमारी श्रोता हेमलता पुरोहित जी ने SBS के 50 वर्षों के लिए हमें शुभकामना संदेश भेजा है, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद. और जी हाँ, सवाल आपको याद ही है कि जो सितारे जमी के लिए आप पासिस जीत सकते हैं, आमिर खान, इन चार जो अभी मैं नाम बताने जा रही हूँ फिल्मों के, उनमें से किसमें वो कलाकार की तरह दिखाई नहीं देते हैं. धोबी घाट, सीक्रेट सुपरस्टार, मेला और पिपली लाइव. तो आप अपने जवाब अपने नाम और ईमेल के साथ में हमें एसएमएस कर सकते हैं 04397997667 पर या फेसबुक और या इंस्टाग्राम इसके इनबॉक्स में भी आप अपने जवाब भेज सकते हैं. बस ध्यान ये इस बात का रखें कि कार्यक्रम के समय के दौरान ही आपके संदेश आए हम तक. इसके जो शर्तें हैं वो उसके बारे में आप पूरी जानकारी आपको फेसबुक पर मिल ही जाएगी. तो बस आप अपने संदेश भेजिए और ड्रॉ में शामिल हो जाइए. ड्रॉ होगा 16 जून को. तो आप सबको पता चल जाएगा 17 जून की सुबह या 16 जून को जब ड्रॉ होगा उसके बाद संपर्क किया जाएगा. तो ये तो बात थी फिल्म सितारे जमी पर. अब देखिए, फिल्मों की बात की है तो देखिए, भारतीय सिनेमा को तो विश्व भर में खूब सराहना मिलती है. बहुत सारे फेस्टिवल्स में सुनने में आता है कि भारतीय फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन मिला. अब वो क्योंकि कहानियां बिल्कुल अलग ढंग से प्रस्तुति हो रही है, अलग कहानियां आ रही हैं, तो बस इसी सब पर आज बातचीत हो रही है भारतीय मूल के ही फिल्म मेकर अनुपम शर्मा जी के साथ में. और उनके अनुभव के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं. ये जो मुलाकात है उनके साथ में की है हमारे सहयोगी नबील हसन ने. तो आइए जानते हैं इस मुलाकात में कि भारतीय जो फिल्में हैं वो क्या कर रही हैं.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी. मेरा नाम है नबील हसन और आज हमारे साथ हैं एक अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर अनुपम शर्मा, जिनका नाम ऑस्ट्रेलिया के 50 मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोफेशनल्स में भी शामिल किया जा चुका है. आज के इस ऑडियो पॉडकास्ट में हम अनुपम जी से सिनेमा और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कई बातों पर चर्चा करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया की फिल्म इंडस्ट्री और उनके आपसी संबंधों की भी बात होगी और साथ ही हाल ही में वेव्स 2025 और कांस फिल्म फेस्टिवल की उनकी यात्राओं के कुछ दिलचस्प अनुभव भी जानेंगे। अनुपम जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि मई का महीना कैसा रहा जब आप अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स की यात्राओं पर थे?
जी हाँ नबील, तो मई का महीना अक्सर मेरे लिए निजी तौर पे और व्यावसायिक तौर पे तीर्थ यात्रा का महीना रहता है, क्योंकि मैं अपनी कांस फिल्म बाजार की तीर्थ यात्रा करता हूँ हर साल कई सालों से। लेकिन इस साल वो जिसे बोलते हैं तीर्थ यात्रा में ज्यादा तृप्ति मिली, क्योंकि बहुत धड़धड़ा के गतिविधियां आई फिल्म जगत में और शुरुआत हुई वेव से, जो कि भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट रखी और ये बिल्कुल विश्व स्तर पे थी। सारे भारत के नामी सितारे, रजनीकांत से लेके शाहरुख खान, आमिर खान सब आए। लेकिन उससे ज्यादा एक जो गतिविधियां हुई यहाँ पे अंबानी सेंटर में मुंबई में, उसमें पूरे विश्व के लोगों का जिसे कहते हैं एक लहर सी आई कि भारत के साथ हम किस तरह काम करें, ना सिर्फ ऑडियो विजुअल में, मीडिया में, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में।
अच्छा, भारत की जो ये पहल है वेव्स, इसका भविष्य आप कैसे देखते हैं?
देखिए, वेव्स तो एक शुरुआत जिसे बोलते हैं ना तूत के पैर पालने में दिखाई दे जाते हैं। तो पहले ही उद्घाटन जो हुआ वेव्स का, वो इतने ऊंचे स्तर पे हुआ, ना सिर्फ जितने अभिनेता थे, निर्देशक थे, और जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हैं लेवल ऑफ गेस्ट और लेवल ऑफ इंटरनेशनल गेस्ट, बट जो उन्होंने छोटे छोटे अपने जिसे मैं बोलता हूँ ना नुक्कड़ पे जो विचार विमर्श होता है, फिर छोटे छोटे उन्होंने इतने पैनल्स बनाए हुए थे कि सभी के लिए सब कुछ था। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में ऑडियो विजुअल मीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम तो बहुत प्रभावित हुए। और जैसा मैंने कहा था कि भारत की जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की जो ब्यूरोक्रेसी है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो टीम है, उन्होंने वाकई में बहुत प्रभावित किया। हमेशा से प्रभावित करते हैं, लेकिन इस बार तो बिल्कुल अलग स्तर पे उन्होंने इतने बड़े समारोह को आयोजित किया इतनी जल्दी और इतने मुश्किल समय में, और वहां मेहनत सबकी साथ दिख रही थी। जैसा मैंने बोला, चाहे वो सचिव हो जाजू या NFDC की टीम हो या श्रीराग मुकंदन हैं जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हैं, जो अपनी टीम को पूरा लीड कर रहे थे, जो हम लोगों से ऑस्ट्रेलिया में, UK में हर साल बात करते हैं। तो एक जो आप जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना प्रोएक्टिव, अपनी तरफ से जो उन्होंने बढ़ के लोगों को आमंत्रित किया, और दूरदृष्टि बहुत देखी वेव्स ने कि साफ था इस साल जो हमारे उनके साथ आदान प्रदान हुआ विचारों का, कि ये वेव्स को एक लंबी रेस का घोड़ा बनाया जा रहा है। तो जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं इट्स नॉट अ फ्लैश इन द पैन, इट्स एन एन्यूअल इवेंट। और बहुत अच्छा लगा ये देख के कि भारतीय दूतावास जो कैनबरा में है इंडियन हाई कमीशन, उसने बहुत दिलचस्पी ली, तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के ऊपर ज्यादा फोकस पड़ा। क्योंकि क्या होता है नबील कि अक्सर इतने बड़े समारोह, चाहे वो कांस हो चाहे वेव्स हो, एक जंगल सा बन जाता है। तो बहुत जरूरी होता है जो हमारे राजदूत हैं, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे सचिव स्तर के जो नौकरशाही की प्रणाली में हैं लोग, वो कुछ जो सेक्टर्स हैं उन पे फोकस डालें, तो प्रोत्साहन मिलता है उस सेक्टर में काम करने वालों को। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया पे जो फोकस पड़ा, अगले साल पैनल्स की बात हो रही है और कई बातें हो रही हैं, तो वेव्स ने मोटे मोटे तौर पे बहुत प्रभावित किया। और हम लोग बहुत आतुर हैं फिल्म जगत के लोग कि अगले साल, इस साल ये हालत थी पहले साल, तो अगले साल और कितनी ऊंचाइयां छुएगा ये।
वेव्स और फिर कांस जैसे फेस्टिवल्स में भारत और ऑस्ट्रेलिया की फिल्म इंडस्ट्री को लेकर क्या कोई खास चर्चा हुई?
काफी विचार विमर्श हुआ, और जैसा कि हम लोग पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं, हम लोगों ने भारत का झंडा लहराया जो ऑस्ट्रेलिया में लहरा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया का झंडा भारत में लहराया। क्योंकि जैसा कि सब जानते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक सह उत्पादन संधि, जिसे आप को प्रोडक्शन ट्रीटी कहते हैं, उस पे हस्ताक्षर हुए थे, वो अभी आजकल एक्टिव है। और कांस में भी हम कुछ लोग जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हैं, और कई भारतीय प्रेमी जो ऑस्ट्रेलियन फिल्म एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो सब थे वहां पे। तो वहाँ पे स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया हर साल एक स्वागत नाश्ता रखती है, वेलकम ब्रेकफास्ट, उसमें आदान प्रदान हुआ विचारों का। और फिर भारत पवेलियन काफी लोकप्रिय स्थल है कांस में, जहाँ पे रोज सम्मेलन होते हैं, बैठकें होती हैं, विचार विमर्श होता है। तो हर जगह भारत ऑस्ट्रेलिया का हम लोग झंडा लहरा रहे थे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इस को प्रोडक्शन ट्रीटी सह उत्पादन संधि के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच की जो जमीन है, जो फिल्मी जमीन, वो बहुत उपजाऊ हो गई है। तो इस वक्त करीब 90 मिलियन से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन फिल्में हैं जो भारत से संबंधित हैं, या भारतीय फिल्में जो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं, जैसे अनुपम खेर की डायरेक्टोरियल डेब्यू है, एक मेरी दुर्गा करके थ्रिलर है जो मेलबर्न में शूट होनी है, एक पहली अबोरिजिनल इंडियन फिल्म है बेचारा कुमारी, एक डॉक्टर संजय सिन्हा नायके हैं श्रीलंकन, उनकी एक इंडियन ऑस्ट्रेलियन फिल्म है चिली चिक्स और हार्ट अटैक्स। सो इन कई फिल्मों को ऑस्ट्रेलियाई फिल्म एजेंसीज, चाहे वो स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो स्क्रीन क्वींसलैंड हो, चाहे स्क्रीन न्यू साउथ वेल्स हो, इन्होंने इन फिल्मों को काफी सहारा दिया है। और वो सहारा आर्थिक रूप में तो दिया ही है, जिसे हम विकास का अनुदान करते हैं, जिसे हम डेवलपमेंट ग्रांट्स बोलते हैं। तो विकास अनुदान के अलावा इन फिल्मों को भारत में काफी जो पूंजी निवेश है वो आकर्षित कर रहा है।
अनुपम जी, आपने ग्लोबल लेवल पर कांस, वेव्स, गोवा और ऑस्ट्रेलिया के कई इवेंट्स में हिस्सा लिया है, क्या इन सभी में आपको कोई कॉमन बात या सीख नजर आती है?
एक तो जो उत्सव का जो समारोह बना होता है ना, जो वातावरण बना होता है उत्सव का
जी,
वो उसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, जिसे आप अंग्रेजी में फेस्टिविटीज कहते हैं। क्योंकि हम लोग अक्सर ये भूल जाते हैं नबील, कि वित्तीय कारण कह लीजिए, आप प्रचार कह लीजिए, पब्लिसिटी कह लीजिए, मार्केटिंग कह लीजिए, इन सब के नीचे एक धड़कता हुआ दिल है, वो है हम सब फिल्मकारों का फिल्म के लिए प्यार, और जो हमारे ऑडियंस हैं, सिनेमा गोर्स हैं, उनका फिल्म के लिए प्यार। तो इन समारोह में जाने से आप वापस जुड़ जाते हैं अपनी जड़ों से, कि हाँ इसलिए आए थे फिल्मों में, ये फिल्म का प्यार, इट्स फॉर मी इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। तो मैं तो समारोह में अपनी बैटरी रिचार्ज करने जाता हूँ, ये देखने को मिलता है दुनिया भर में क्या हो रहा है। फिर क्या होता है नबील, एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बात यह है कि हम लोगों के फिल्म इंडस्ट्री में अहम बहुत होता है, पब्लिसिटी हो गई, आर्टिकल आ गया, तो थोड़ी ईगो हो जाती है। जब आप इन फेस्टिवल्स में जाते हैं तो पता चलता है सही तौर पर कि हम तो एक रेत का तिनका भी नहीं है इस बड़ी दुनिया में, जहाँ इतने कला है, इतना टैलेंट है। तो उससे इंस्पिरेशन बहुत मिलता है, बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत प्रभावित होते हैं, उत्साह मिलता है। तो मैं तो इसलिए जाता हूँ समारोह में, आदान प्रदान होता है। और फिर जब आप सच्चे मन से, अच्छी नीयत से लोगों से मिल रहे हैं, तो हमेशा बता के कोई ना कोई प्रोजेक्ट निकल आता है।
कांस फिल्म फेस्टिवल का कोई खास हिस्सा आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे?
कांस में एक महिला रहती थी हमारे साथ, बातें करने लगे हमने उनके, 2-3 साल पहले की बात है, कोविड के बाद। उदाहरण दे रहा हूँ कि कितने इम्पोर्टेंट होते हैं समारोह अगर आप अच्छी नीयत से जा रहे हैं। उनसे बातचीत होती रही, बातचीत के बाद खाना वाना हुआ, तो चलते हुए मेरे मुंह से निकल, मैंने कहा आपका पता नहीं चला आप क्या करती हैं, इटली की भी थी, अमेरिका भी थी। तो मुस्कुरा के बोलनी है कि मैं $1 बिलियन का फंड मैनेज करती हूँ अमेरिका में। तो मैं मुस्कुरा पड़ा, तो मैंने कहा तुम्हारी अच्छी किस्मत है। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली, उन्होंने बोला मुझे ये इवनिंग, उस इवनिंग में कुछ साउथ एशिया के थे, श्रीलंका के थे, कुछ ऑस्ट्रेलिया के, हम 8-9 लोग थे। बड़ी प्यारी बात बोली उन्होंने, अनुपम समारोह में मैं हमेशा जाती हूँ, लोग ये देख के कि मेरे पास इतने पैसे हैं वो सीधे जो है बेचना शुरू कर देते हैं फिल्म। आपके इस ग्रुप में खाना खा के मुझे इतना अच्छा लगा, किसी को पता नहीं था कि मेरे पास इतने पैसे हैं, लेकिन फिर भी सबने आदर सम्मान दिया। तो ये छोटे छोटे कहानी किस्से हर समारोह में होते हैं जो आपके साथ जिंदगी भर रहते हैं, और नए तार जुड़ते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। तो यही होता है, जिसे आप अंग्रेजी में अगर 2 शब्दों में बोले तो सेलिब्रेशन और नेटवर्किंग, इन 2 चीजें उसका महत्व रहता है इन समारोह में।
SBS हिंदी पर आप सुन रहे हैं भारतीय मूल के अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर अनुपम शर्मा से हमारी खास बातचीत। ये इस ऑडियो पॉडकास्ट का पहला हिस्सा था।
SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम, और आपके साथ हूँ मैं अनीता बरार। इस अंतराल से पहले आप बातचीत का पहला भाग तो सुन ही रहे थे, तो आइए उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुछ और दिलचस्प बातें।
SBS हिंदी के इस ऑडियो पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर अनुपम शर्मा, जिनसे सिनेमा और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कई बातों पर चर्चा हो रही है। ये पॉडकास्ट दो भागों में है। पहले भाग में उन्होंने हमें वेव्स और कांस फिल्म फेस्टिवल की यात्राओं के अनुभव के बारे में बताया। आइए अब इसी से जुड़ी कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं। अनुपम जी, दुनिया भर की कई फिल्म फेस्टिवल्स में अब इंडियन सिनेमा को खूब सराहना और स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है। क्या इसका मतलब है कि बेहतर फिल्में बन रही हैं या लोगों के नजरिए में बदलाव आया है? आपका क्या मानना है?
देखिए, क्या है, चेंजिंग ट्रेंड तो नहीं है। कहानियां जब आती हैं अच्छी तो उनका उनका स्वागत होता है, चाहे वो सत्यजीत रे थे 60-70 के दशक में। थोड़ा सा हम लोग कोशिश कर रहे हैं बदलाव ये हो कि भारत की उन्हीं फिल्मों को सम्मान ना मिले जो हमारी जो हमारे जिसे बोलते हैं गहराइयों या अंधेरों के ऊपर प्रकाश डालती हूँ। जरूरी नहीं हमेशा आप गरीबी दिखाएं या हमेशा आप ऐसी नकारात्मक चीजें दिखाएं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो फिल्में आई हैं वो वाकई में बहुत अच्छी हैं। चाहे पायल कपाड़े की ऑल वी इमेजिन पिछले साल आई थी जिसमें पहला पुरस्कार जीता था और इस बार वो जूरी मेंबर भी थी, और इस बार मेरे बहुत ही चहेते निर्देशक हैं नीरज घयान जिन्होंने मसान बनाई जो कि मेरी फेवरेट फिल्म है, उनकी फिल्म होमबाउंड थी ऑन सर्टेन रिगार्ड्स में
जी।
पिछली बार संतोष भी आई थी। तो ये फिल्में हैं, कुछ तो है कि कहानी बन रही है। दूसरा, आप ये मत भूलिए कि हम उस देश की बात कर रहे हैं भारत की जो विश्व का सबसे बड़ा कॉमर्शियल फिल्म इंडस्ट्री है। तो सब कुछ छिप जाता है वो 400-500 करोड़ के नारों में, जहाँ पे भारतीय फिल्म मेकर्स को केटर करना पड़ता है मासेस को, क्योंकि भारत में फिल्म इज दी ओनली फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। तो अब वो या तो अपने बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश की मासेस को केटर करें या फिर वो अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिजीवी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल्स को केटर करें, तो वो थोड़ा एक जद्दोजहद रहती है। लेकिन फिल्में तो बनती हैं और ऐसा कोई नियम नहीं होता फिल्म इंडस्ट्री में कि आज इतनी देश की लानी आज इतनी देश की लानी। तो भारत को स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, मिलता रहेगा। वो बात अलग है कि हमारी थ्री इडियट्स या हमारी लगान, उसमें उसकी भाषा अलग है। मैं भाषा हिंदी अंग्रेजी की नहीं कर रहा हूँ, जो फिल्मों की भाषा है वो अलग है। 3.5 घंटे की हैं, हम लोग गानों में विश्वास रखते हैं। आपके जो श्रोता जानना चाहें कि भारतीय फिल्म जगत दुनिया से इतना अलग क्यों है और इतना विराट क्यों है, तो आप ही के टीवी चैनल पे SBS ऑन डिमांड पे मेरी लास्ट फिल्म चल रही है ब्रांड बॉलीवुड डाउन अंडर। इसमें अनुपम खेर ने बड़ी प्यारी बात बोली है। उन्होंने बोला है कि वी मेक 1.4 बिलियन पीपल हैप्पी, वी सेलिब्रेट लाइफ, वी डोंट सेलिब्रेट मिजरी ऑफ लाइफ। तो इसलिए भारत से फिल्में तो बनी रही हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट फिल्म से भारत से आ रही है। अनुराग कश्यप के नेतृत्व में एक नया फिल्म मूवमेंट जो शुरू हुआ था 12-13 साल पहले, गैंग्स ऑफ असिपुर हो, अगली हो, और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मेकर जो है अमेरिका में रचना शाह हैं जिनकी लॉस्ट एंड फाउंड इन कुंभ का उद्घाटन हुआ था मार्शेडू फिल्म भारत पवेलियन में जिसमें राहुल भट्ट हैं। तो जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में फिल्में बना रहे हैं भारत से संबंधित, ऐसे ही अमेरिका में लोग फिल्में बना रहे हैं, यूके में लोग फिल्में बना रहे हैं, और मुझे उन फिल्मों से बहुत आशा है क्योंकि वो फिल्में आपकी हमारी भाषा बोलती हैं, जो हम प्रवासी भारतीय हैं हम लोगों की भाषा बोलती हैं, हम लोगों के वातावरण से जुड़ी हैं, तो उन फिल्मों को भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा।
अच्छा, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए आपका क्या संदेश होगा जिनके पास अच्छी कहानियां हैं लेकिन मार्गदर्शन और फंडिंग की कमी उन्हें कभी कभी रोक देती है, उन्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए?
देखिए, अगर मेरा एक बहुत मानना है, जब मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता भी हूँ फिल्में, और मेरा अपना भी निजी तौर पर मानना है कि अगर आपकी नीयत साफ है और कहानी अच्छी है
जी,
तो पैसा आपकी पहली चिंता होगी। यू नो, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं मनी विल बी अ फर्स्ट वरी बट लास्ट प्रॉब्लम, पहली चिंता होगी लेकिन आखिरी दिक्कत होगी, क्योंकि और बहुत सी चीजें आती हैं। तो वही कृष्ण की बात हम लोग 1000 साल पुरानी कहना चाहूंगा, कर्म करती रहिए। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह के फिल्म पूंजी निवेश नहीं ला सकते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते हैं, तो और कहीं लाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आपको 30-40-50% आपके बजट का कहीं से मिल रहा है तो बहुत जरूरी है। तो एक तो ये सलाह है मेरे को, दूसरी ये है कि अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मेजॉरिटी लोग जो काम कर रहे हैं फिल्मों में, चाहे वो जो थॉमस हो जिन्होंने होटल मुंबई बनाई थी, या डॉक्टर विक्रांत किशोर हो जो एक एकेडमिक हैं, या जूली मार्लो हो, इन सबका एक संगठन है ऑस्ट्रेलिया इंडिया फिल्म काउंसिल, तो उनके पास मदद के लिए आप कभी भी जा सकते हैं, मुफ्त में वहां मदद मिलती है। वो उन्हीं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए बनाया गया है, खासकर ऑस्ट्रेलिया में जो इंडिया के साथ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो उनका उनको वहां भी भेजना चाहूंगा, ये एक और सलाह दे सकता हूं मैं। और दूसरा ये है कि हमारे भारतीय समुदाय में एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि फिल्मों को शौक के लिए बनाना कि व्यवसाय के लिए बनाना, इसके बीच की जो रेखा बहुत धूमिल है। तो आप जब भी फिल्म बना रहे हैं, ये बड़ा सोच के बनाइए कि आप फिल्म जगत में शौक के लिए आए हैं कि व्यवसाय के लिए आए हैं, वो डिफरेंस बहुत जरूरी है। क्योंकि और जब आप वो पहचान लेंगे ये अंतर इन दोनों के बीच में, तो सटीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ एक कन्नड़ के फिल्म मेकर हैं जो वापस चले गए हैं, वो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, उन्होंने बोला नहीं मैं तो बिल्कुल ही व्यावसायिक तरीके से बनाऊंगा, तो उसका एक अलग रूट होता है। तो जब आप ये निर्णय ले लेंगे कि हाँ आपने फिल्म बनानी है, अच्छी बनानी है, तो फिर उसको प्रोफेशनली करिए, उसको घरेलू अंदाज में मत करिए, क्योंकि आदि का नुकसान होगा और फिर उससे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की छवि भी खराब होती है, अरे ये तो ऐसे ही। तो ये बहुत जरूरी है। बाकी सलाह के लिए जितने आपके इंडिपेंडेंट स्वतंत्र फिल्म मेकर हैं उनके लिए विक्टोरिया में स्क्रीन विक है, हर प्रदेश में ऑस्ट्रेलिया की एक फिल्म एजेंसी है जहाँ आपकी जिनकी वेबसाइट में बहुत सूचनाएं हैं, स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट में बहुत सूचनाएं हैं, ऑस्ट्रेलिया इंडिया फिल्म काउंसिल है, NFTC है, ISFI है, तो काफी सारे सोर्सेज हैं, स्रोत हैं उनके लिए जहाँ उनको सूचना मिल सकती है, प्रोत्साहन मिल सकता है, और सबसे बड़ी बात जहाँ उनको सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन जो पहली बार फिल्में बना रहे हैं उनको यही है कि अपने आसपास घेरा बना लीजिए काफी अनुभवी लोगों का, तो उससे क्या होता है कि प्रोजेक्ट को लाइफ मिलती है
जी।
और बाकी तो सब ये मत भूलिए कि हर चीज की किंग स्टोरी इज द किंग ऑफ एवरीथिंग, कहानी अच्छी होगी तो जरूर उसको पर्दे में जगह मिलेगी।
अनुपम जी, आजकल स्क्रीन टाइम और स्क्रीन साइज दोनों काफी कम हो गए हैं, क्या ये माइक्रो या रील्स जैसे छोटे कंटेंट व्यूअरशिप के तरीके को बदल सकते हैं, खासकर क्योंकि इनका कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है?
हाँ, बड़ी अच्छी बात है, कंज्यूम हो रहा हो तो सालों से कंज्यूम होता था, उनकी अलग जगह है। लेकिन अगर आप ये कहना चाह रहे हैं क्या वो रिप्लेस कर देंगे सिनेमा को, ये तो कभी नहीं होगा। 1934 में ध्वनि आई, साउंड आया, लोगों ने बोला अरे सिनेमा डेड हो गया, कुछ नहीं हुआ। इंडिपेंडेंस मूवमेंट आया, अरे अब सिनेमा डेड हो गया, हमारे पास तो अपनी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं हुआ। हर विपदा से कम भारतीय फिल्म जगत, दुनिया भर का फिल्म जगत और साहस से वापस आया है और शक्तिशाली बन के आया है। VHS आया था, आपको याद होगा वीडियो, लोगों ने बोला अरे अब तो सिनेमा खत्म हो गया, नहीं हुआ। CD आई, DVD आई, अब तो सिनेमा खत्म हो गया, नहीं हुआ। पायरेसी हुई, सिनेमा खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ। नेटफ्लिक्स आया, प्राइम आया, सिनेमा ने खत्म हो गया, नहीं हुआ। तो जो होली ग्रेल है ना, जो हम सबका मंदिर मस्जिद गिरजा, वो थिएटर ही रहेगा, क्योंकि वहां हम जाते हैं आदर के साथ, लोगों की फिल्में देखते हैं और उससे प्रेरणा लेके हम भले ही छोटी मोटी रील्स बनाते रहे। लोगों का कंजम्पशन बदला है, लेकिन फिर भी थिएटर भर रहे हैं, कम भर रहे हैं बात अलग है, और अब जो भी अच्छी पिक्चरें आ रही हैं वो थिएटर में ही देखी जा रही हैं और लोग बहुतायत में थिएटर जा रहे हैं, वो बात अलग है। कि जो रील्स आ रही हैं शाम को रिलैक्स करने के लिए, मैं भी करता हूँ फोन में अपने रील करने, तो मैं इन रील्स में प्रेरणा का स्रोत ढूंढता हूँ कि कहाँ से क्या कोई कहानी मिल जाए करने के लिए। जैसे जो फ्रेम्ड बना रहा हूँ मैं कहानी, उसका मेरे को रील से बड़ा प्रेरणा मिल रही है कि किस तरह रील्स और जो सोशल मीडिया का जो माइक्रो कंटेंट है, किस तरह हम लोग नफरत फैला रहे हैं। सकारात्मक चीज तो हो गई, ठीक है हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इससे जो जिसे आप बोलते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी,
जी जी जी,
तो उसके क्या समाज पे कितना उसका असर पड़ रहा है और गंदा असर पड़ रहा है। आजकल हम उस पर शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन फिल्मकार फिल्में रिप्लेस हो जाएंगी ऐसा तो हो नहीं सकता। ये बात अलग है कि और एवेन्यूज मिल जाएंगे अपनी कहानी बनाने के लिए, तो ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे इंडिया में पॉकेट फिल्म्स ने माइक्रो वर्टिकल जो स्टोरीज होती है वो शुरू हो गई, अब दो दो मिनट के एपिसोड आ रहे हैं, तो आपकी 25 मिनट का अगर कोई आधा घंटे की फिल्म है उसका दो दो मिनट के 15 एपिसोड या 12 एपिसोड आ रहे हैं, तो वो भी बड़ा अच्छा है। अगर उससे लोगों को एक एवेन्यू मिल रहा है अपनी कहानी कहने का, कुछ नाम करने का, और वहीं से लोग आ रहे हैं। अब आप देख लीजिए नेटफ्लिक्स प्राइम में कितने एक्टर्स को ब्रेक मिला जो सालों से स्ट्रगल कर रहे थे, चाहे पंकज त्रिपाठी हो, चाहे अलावत हो, अब इन्हीं लोगों को जो ही ब्रेक मिल गया, अब वापस इनका उद्देश्य तो सबका सिनेमा ही है ना, तो अब इन सब लोगों को सिनेमा में रीड रोल्स मिल रहे हैं। तो रील से माइक्रो कंटेंट से आदतें बदली हैं, लेकिन सिनेमा का महत्व नहीं घटा है।
SBS हिंदी पर आपने सुनी भारतीय मूल के अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर अनुपम शर्मा से हमारी खास बातचीत। ये इसका दूसरा और अंतिम भाग था। SBS हिंदी के लिए मैं हूँ नबील हसन।
तो श्रोताओं, आपने ये बातचीत सुनी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस बातचीत में मज़ा आया होगा और भारतीय और ऑस्ट्रेलियन फिल्मों के साथ में क्या कुछ जुटा हुआ है उसके बारे में भी आपने जानकारी तो हासिल की होगी। तो चलिए आपसे मुलाकात करूंगी शनिवार के कार्यक्रम में। तब तक के लिए अनीता बरार का प्यार भरा नमस्कार।
SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।